Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book value offer is being offered at a price band of Rs 542 to Rs 570 per equity share of face value Rs 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book value offer is being offered at a price band of Rs 542 to Rs 570 per equity share of face value Rs 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges.
Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, please remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Roz ki tarah aaj bhi hum desh-videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath hazir hain. Aur aaj somvar hai aur har ek somvar ki tarah आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे. ऐसा होता हूँ आप हमें फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं. हमारे नंबर हैं 2331-4444 और 2342-1050. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें. प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वित्त विशेषज्ञ अमन अग्रवाल. अमन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद है अनुभा रोहतगी.
थैंक यू अमरीश. स्टॉक मार्केट्स किक ऑफ न्यू फिस्कल ऑन बुलिश नोट. सेंसेक्स निफ्टी हिट एन ऑल टाइम हाई इन इंट्राडे. Prime Minister Narendra Modi says India needs to become economically self-reliant in the next 10 years so that the nation is not impacted much by global factors. And GST collections grew 11.5% to 1.78 lakh crore rupees in March, second highest since rollout.
नए वित्त वर्ष की शुरुआत में शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दी. सेंसेक्स और निफ्टी जिनके कारोबार में अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है ताकि विश्व की हलचलों से उस पर ज्यादा असर न पड़े. और मार्च में जीएसटी कर संकलन 11.5% बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है. और आज की पहली खबर, नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत शेयर बाजारों में तेजी के साथ हुई और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों ने ही दिन के कारोबार में नई ऊंचाइयों को छुआ. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 363 अंक यानी 0.5% की बढ़त के साथ 74,015 अंकों पर बंद हुआ. दिन के कारोबार में सेंसेक्स 74,255 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 135 अंक यानी 0.60% की तेजी के साथ 22,462 अंकों पर बंद हुआ. दिन के दौरान निफ्टी ने 22,530 अंकों के स्तर को छुआ.
Benchmark equity indices kicked off the financial year 2024-25 on a strong note as the Sensex and Nifty both touched fresh highs in intraday trade today. The Sensex gained 363 points or 0.5% to close at 74,015. The BSE Sensex soared to a fresh record high of 74,255 in intraday trade. The NSE Nifty climbed 135 points or 0.60% to settle at 22,462. During the day, it touched an all-time peak of 22,530. From the Sensex basket, JSW Steel, Tata Steel, Alpha Tech Cement, NTPC, Larsen & Toubro and HDFC Bank were the major gainers. Titan, Nestle, Bharti Airtel and IndusInd Bank were among the laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.64% while the small-cap index rose 3%. In sectoral indices at the BSE, the reality sector zoomed 4.18%, telecommunication index jumped 3.44% and the metal sector surged 3.39%, while the auto and consumer durable sectors ended in the red. And let's go over straight to our first caller of the day who's calling us from Delhi. That is Yogesh Sharma. Yogesh, welcome to the program. Please ask your question.
Thank you so much. Sir, my question is that as a retail investor, in our portfolio, फिक्स इनकम एसेट्स हैं और कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो एक जो हमारे फिक्स इनकम एसेट्स हैं क्या उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन आप देखते हैं जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सके आज की डेट में?
ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. इन्फ्लेशन बीटिंग जो रिटर्न्स होते हैं उसमें अगर आप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के नाम पे कहा जाता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो 7 से 8 साल के लिए पीरियड में होते हैं वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ऐसे हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट रेट पहले तो फिक्स हुआ करता था, अब जो है वो उन्होंने वेरिएबल कर दिया है रेपो रेट के हिसाब से लिंक करके और उसमें रिटर्न हमेशा थोड़ा ज्यादा मिलता है. दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड्स भी आते हैं मार्केट में काफी समय से, उनको भी देखा जा सकता है जिसमें आपको फिर इन्फ्लेशन से इंडेक्सेशन करके आपको रिटर्न मिल सकता है.
अमन जी, मैं यहाँ एक चीज और बात पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने आरबीआई बॉन्ड्स की बात की है तो आरबीआई बॉन्ड्स का एक फिक्स पीरियड भी होता है जबकि वो एक फिक्स क्लोजिंग पीरियड होता है तब तक आप उसको रिडीम नहीं करवा सकते.
बिल्कुल, आपने ठीक कहा. उसके अंदर जो है अब जो है इसमें 8 साल का पीरियड लॉक इन कर दिया है, पहले 7 साल हुआ करता था और थोड़ा कुछ चेंजेस भी किए हैं पिछले साल से जिसमें पहले इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट कर सकती थी, कंपनीज भी कर सकती थी, चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज भी कर सकती थी. अब सिर्फ जो इंडिविजुअल्स हैं या एचयूएफ्स हैं वही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर और उसके अंदर जो है ये पीरियड के अंदर लॉकिंग जरूर होता है बट जैसे सीनियर सिटीजन हैं या कुछ इस तरह के कुछ कैटेगरीज हैं उनको उन्होंने कुछ पीरियड के बाद ब्रेक करने की सहमति दी हुई है.
एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम. आवर नेक्स्ट कॉलर इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर. बिफोर वी टेक हिज कॉल वी हैव टू गो इन फॉर अ कमर्शियल ब्रेक.
Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price stand of Rs 542 to Rs 570 per equity share of face value Rs 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLM and the stock exchanges. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of Rs 542 to Rs 570 per equity share of face value Rs 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLM and the stock exchanges.
मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है. जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं. जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
हाँ नमस्कार सर, ये बोला कि कंपनी राइट इशू कब निकालती है और इसको राइट इशू क्यों बोलते हैं और जो ये आईपीओ में जो शेयर निकलता है उसको कौन सा शेयर बोलते हैं?
देखिए, जो आईपीओ में शेयर निकलता है वो जो है शुरू में जब इक्विटीज या कभी एक्सपैंड करती है कंपनी तो उस समय जब शेयर निकाले जाते हैं तो उसको आईपीओ के अंदर पहले निकाल के मार्केट में उतारा जाता है. उसका एक पीरियड होता है, उसके अंदर उसको सब्सक्राइब करना होता है. अगर पूरी तरह सब्सक्राइब ना हो तो उस पैसे को वापस करना पड़ता है या सेबी से परमिशन लेके उस पैसे को रखा जा सकता है, वो कंपनी में किया जाता है. जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं जिसके अंदर जहाँ इक्विटीज जो भी कैपिटल शेयर होता है टोटल उसमें से सारा पूरा नहीं किया जाता, कुछ पोर्शन के शेयर लॉन्च किए जाते हैं। जो राइट इशू होते हैं वो उसी के अंदर जब दोबारा कभी कभी कंपनीज लॉन्च करती हैं तो उसमें जो है पहले कुछ अपने शेयर होल्डर्स को राइट देती हैं खरीदने के लिए, तो इसलिए उनको राइट इशू कहा जाता है। वो आईपीओ टाइप ही होते हैं, बट फर्क ये होता है कि पहले क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विटी होल्डर हैं तो आपको ये बेनिफिट और चांस दिया जा रहा है कि आप उनको खरीद सकें, और उसके बाद फिर बाहर वालों को दिया जाएगा, तो उस तरीके से राइट इशू बनाया जाता है।
We have the next caller online, Subhash from Thane. Subhash, welcome to the program. Please ask your question. जी अपना सवाल पूछे।
सर, आई वॉन्ट अ क्वेश्चन, व्हेन ए कंपनी विल रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एंड व्हेन सच डिसीजन इज टेकन एंड व्हाई एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स।
Thank you for this question. You are very correct. The face value of the share at times get reduced in terms of keeping the market value of the company and the balance sheet position of the company. It does not happen very often. It's a rare occurrence which happens. That is one case where it happens. Secondly, when the company is actually going into the market for selling or actually acquiring more firms, so that time also they at times revalue their shareholdings, which happen. And that's where the value can be reduced or increased at that time when the face value gets changed. When it gets changed, reduced, then there is an impact on the equity holders because their shareholding per capita basis, the share percentage remains the same in the total pool, but then their value goes down.
और थाने से हमारे श्रोता सुभाष लाइन पे हैं।
सुभाष ने अभी सवाल पूछा तो अमरीश सिंह ने आप अगली खबर करते हैं।
जी तो रुपए का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आज मामूली तेजी दिखाई दी। एक डॉलर का मूल्य 83.40 रूपये के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.1% की बढ़त के साथ 104.59 के स्तर पर नजर आया। और अब एक नजर एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.18%, सिंगापुर का स्टेट टाइम्स इंडेक्स 0.34% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.04% बढ़ा। दूसरी ओर जापान के निकेई में 1.42% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के बाजार आज अवकाश के चलते बंद रहे।
एंड द नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम कोलकाता, मिस्टर अतनु साहा। मिस्टर अतनु, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी फाइनेंशियल न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। माय क्वेश्चन इज टू आवर सर दैट In spite of all problems, economical and political all problems, our in country GDP estimating it is 8%. Sir, my question is, what is sideways economy? And another one, how do we utilize by SIP and W in the systematic investment plan and systematic withdrawal plan within time? Thank you, sir.
Very kind. First of all, you know, the economy has been doing very well. Bharat Sarkar ne jo kadam uthaye hain, policy framework kiye hain, usse economy mein boostness aayi hai, robustness aayi hai. Agar hum foreign exchange reserves dekhen, wo jo hai September 2021 ke level se bhi cross kar chuke hain. Pichle ek dher mahine mein hi $140 million aaye, aur us wajah se reserves kafi achhi tezi pe hain. Rupya bhi jaise abhi bataya gaya badhotri ki taraf gaya, strengthen hua hai. जो हमारा आपने जीडीपी की बात करी वो भी 8% की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उससे ज्यादा की ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है। जीएसटी के भी नंबर्स काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए टोटल इकोनॉमी के जो फ्रेमवर्क है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें और डिप्लोमेटिक कंडीशंस देखें, दोनों तरफ से हिन्दुस्तान की बढ़ोतरी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पे आपने ये जो पैरेलल इकोनॉमी हम जिसको भी कहते हैं की बात करी है, देखिए हिंदुस्तान में काफी समय से कैश इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चलता रहा है। कोई भी इंसान सारे टाइम सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस या नहीं करता है, कैश ट्रांजैक्शंस भी करता है। उसमें कुछ कैश ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो है टैक्स इंसान नहीं पे करता है, जो इनकम कमाता है उसको टैक्स नहीं पे करता है, उसे वो ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी के अंदर एस्टिमेट किया जाता है। काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले ये एस्टिमेट किया था कि जो हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है करीबन 1.5 से 2% जो है डेढ़ से पौने दो परसेंट ज्यादा ग्रोथ हमारी देखने को एक्चुअल में मिलती है, क्योंकि काफी पोर्शन जो है हमारी इकोनॉमी का अनअकाउंटेबल रह पाता है, जो लेबर क्लासेस हैं, जो कैश में ही डील करती हैं, तो इस वजह से जो वो इकोनॉमी है वो उस पोर्शन में आ जाती है। तो करीबन आप लेके चले अगर 8% की ग्रोथ अगर निर्मला सीतारमन जी ऐसे कह रही हैं तो हम इफेक्टिवली हमारी ग्रोथ करीबन 12-13% के करीब हो पाती है।
और गाजियाबाद से हमारे श्रोता संजीव लाइन पे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of Rs. 542 to Rs. 570 per equity share of face value Rs. 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of Rs. 542 to Rs. 570 per equity share of face value Rs. 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges.
मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजियाबाद से हमारे श्रोता संजीव लाइन पे हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
जी सर नमस्कार।
जी सवाल
नमस्कार
जी सर, मेरा कंसर्न ये कि जो अभी सैटी के चेयरमैन ने जो एक कंसर्न रेज किया था कि मार्केट में ग्रोथ है, एक बबल है, तो अभी इमीडिएटली से क्या शॉर्ट टर्म ट्रिगर आपको दिखे कि मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे चला गया है?
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक कंसर्न नेचुरल है किसी भी रेगुलेटर के लिए रेज करना, बिकॉज जो दो तीन मार्केट होती हैं जिसमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एक में बढ़ता है तो दूसरे में गिरता है, जैसे रियल एस्टेट है, कैपिटल मार्केट है और बुलियन मार्केट हिंदुस्तान में देखा जाता है जिसे हम गोल्ड मार्केट कहते हैं। ये जो तीनों मार्केट हैं एक साथ नॉर्मली कभी नहीं बढ़ती हैं, बिकॉज एक निवेशकार जो है एक से निकालता है दूसरे में डालता है, पर ये तीनों मार्केट इस समय बढ़ती नजर आ रही हैं, तो ये एक चेतावनी का इम्प्रेशन है देना जरूरी होता है। पर यह भी देखा गया है दुनिया भर में जब भी इलेक्शन होते हैं विश्व के अंदर किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, यूके हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, जापान हो, तो वहां पे काफी जो है लिक्विडिटी बाहर से पैसा आता है, तो उस वजह से भी इन मार्केट्स के अंदर एक साथ उछाल देखने को मिलता है और ये पुराना हिस्टोरिकल ट्रेंड है।
और चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के जश्न में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट
वी विल टेक दैट स्टोरी बट फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सेड दैट इंडिया नीड्स टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स सो दैट द नेशन इज नॉट इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबल फैक्टर्स। स्पीकिंग एट द कमेमोरेशन सेरेमनी ऑफ द 90 ईयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन मुंबई, the Prime Minister said that the transformation of Indian banking sector is a case study. He said the banking sector has become profitable and credit growth has been increasing due to the steps taken by his government and the RBI in the last decade. He said the government infused capital of 3.5 lakh crore rupees in PSU banks for their revival. He further said that the gross non-performing assets NPA of public sector banks, which was around 11.25% in 2018, dropped to less than 3% by September last year. Addressing the gathering, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said during COVID pandemic, the RBI adopted and deployed conventional and unconventional range of instruments to provide liquidity, promote growth and to ensure financial stability. She added that during the Russia-Ukraine conflict, the measures taken by the central bank helped in addressing the inflation and the forex market volatility. Speaking on the occasion, RBI Governor Shaktikanta Das said the RBI's evolution as an institution has been closely intertwined with the development of the Indian economy. He said from being a bank, central bank primarily concerned with allocation of scarce resources during the planning period, the RBI has transitioned into being an enabler for the market economy. The RBI commenced its operations on 1st of April 1935. Moving on, the gross goods and services tax, GST revenue for March this year has witnessed the second highest collection ever at 1,78,000 crore rupees, with an over 11% year-on-year growth. The Union Finance Ministry said this surge was driven by a significant rise in GST collection from domestic transactions at 17.6%. The average monthly collection for last fiscal year stands at 1,68,000 crore rupees, surpassing the previous year's average of 1,50,000 crore rupees. The ministry said GST revenue net of refunds for March this year is 1,65,000 crore rupees, which is a growth of 18.4% over the same period last year. And let's go over to Gurgaon, from where our next listener is calling us, Ramesh. Ramesh, welcome to the program. Please ask your question.
नमस्कार
जी. जी, सवाल पूछे.
सवाल मेरा ये है कि मैं कुछ म्यूचुअल फंड भी है मेरे पास अभी, इसकी जानकारी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कुछ हमारी मैच्योरिटी होने वाली एफडीओ की, तो मैं शेयर मार्केट में इसको डालना चाहता हूँ. तो दूसरी बात ये है कि एक मुताबिक मैं अभी 2 महीने बाद मेरे 60+ हो जाएगी, 60 हो जाएगी, सीनियर सिटीजन की जो मेरी अवधियाँ हैं, क्या ऑटोमेटिक क्या मेरी वो सिटीजन में शिफ्ट हो जाएंगी, मैं जो मेरे इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ेगा वो मिल जाएगा क्या मेरे को?
देखिए जी, पहली बात तो जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक के अंदर, आपकी एज के हिसाब से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज में, तो जैसे ही वो नेक्स्ट रोल ओवर में जाती है, अगर आपने ऑटो रिन्यू फैसिलिटी ले रखी है बैंक से, जो ज्यादातर बैंक देते हैं आजकल बिना पूछे आपसे, नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहता है, तो उस केस में आपको मिल जाता है. दूसरी बात, जैसे आप बता रहे हैं, देखिए फिक्स डिपॉजिट का एक अपना रोल होता है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना हो, चाहे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, उसका अपना रोल होता है. वो थोड़ा रिस्की रहता है, वहां पे पैसा गायब भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें नुकसान होने की इतनी संभावना नहीं होती, बिकॉज आपको जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है उससे थोड़ा ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट उसमें मिल रहा होता है, तो आपको एक सेविंग बन के आगे बेनिफिट हो सकता है. तो मेरे विचार में ये आपको पोर्टफोलियो अपना देखना जरूरी है कि मैं इसको सेफ रखना चाहता हूँ या इसको निवेश करके पैसा पे खेलना चाहता हूँ. तो अगर आप खेलना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो स्टॉक मार्केट काफी बुलिश है, और म्यूचुअल फंड हो या SIP हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. पर अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट है, या जैसे मैंने पहले बताया RBI टैक्सेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, वो सेफ रहते हैं, उसमें रेट भी थोड़ा ज्यादा मिलता है फिक्स डिपॉजिट से, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. पर उनमें फिर जितना पीरियड आप लॉक इन रखेंगे उसके हिसाब से आपका रेट ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है.
एंड बिफोर वी proceed with the program, let's go in for another commercial break. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLN and the stock exchanges. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLN and the stock exchanges.
Welcome back to Market Mantra, where today we are taking calls from you, our listeners. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. Do remember to prefix the Delhi FTD code 011 in front of these numbers. And now let's hear the next story from Amrish.
तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं. इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है. दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1,795 से घटकर अब 1,764 रुपए हो गई है. कोलकाता में इसकी कीमत 1,879 रुपए, मुंबई में 1,717 और चेन्नई में 1,930 रुपए हो गई है.
Raksha Mantri Rajnath Singh has said that for the first time, the country's defense exports have crossed 21,000 crore rupees mark in 2023-24. In a social media post, Mr. Singh said defense exports have witnessed a spectacular growth of over 32% over the previous fiscal year. He said the defense ministry has taken several initiatives to spur India's defense manufacturing and exports. The minister said country's defense industries, including the private sector and the defense public sector undertakings, have registered a commendable performance in the recent years. Mr. Singh congratulated all stakeholders on crossing the new milestone in defense exports. Aman, you know, from being a largely defense equipment importing country, now we are at a stage when we're exporting, and we just, you know, this financial year just crossed 21,000 crore rupees. How significant is this development?
You see, apart from the foreign exchange, we are able to earn and keep with us, which is a very critical component, knowing historically that we have used that for buying medicines, food grains, and a lot of other essential items, including oil and all. The more important thing, in my opinion, is the motivation the defense experts are getting in this country now. Because of this, a lot of people are getting motivated in the defense segment who produce these defense equipments and all, that their works are being appreciated. And also the fact that, you know, we are not dependent on another agency, and then our secret structures of defense security gets leaked, because then someone knows about what kind of defense equipment we have. Since we produce them, we are edge upon the others. And I think that is even more critical than all this 21,000 crores which we are earning.
Yes, very well said. And let's move on to commodities. Oil prices were trading lower today amid volatility. Brent crude oil futures was down to trade at $86.85, whereas Western Texas Intermediate was lower at $83.09 when reports last came in. And the next caller is Tapash from Kolkata. Tapash, welcome to the program. Please ask your question and make it short, please.
Yeah, good evening, sir, ma'am. That, I want to know that systematic withdrawal plan and CW dividend plan. Actually, that being a senior citizen, which one I will just prefer.
So he wants to know about the systematic investment plan and the dividend plan.
Yeah, so since systematic investment plan would be a better choice for you to go forward instead of the dividend plan.
और चलते हैं सोने चांदी का हाल भी जान लेते हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस कीमती धातु का मूल्य 738 रुपए की तेजी के साथ 68,439 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी मई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 606 रुपए की बढ़त के साथ 75,654 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान सोना बढ़त के साथ $2,269.40 प्रति औंस के स्तर पर रहा. चांदी भी बढ़त के साथ $25.15 प्रति औंस के स्तर पर रही.
Aman, very short, quick question from you. MPC meeting beginning on 3rd April. What do you expect?
No, I don't think there would be any change, in my opinion. The economy is doing fairly well, and I think that is a state which will be maintained by the Reserve Bank of India.
And the studio clock is now telling us that it's time to wind up the program. We cannot take any more calls. Thank you so much for coming to the studio, Aman, and answering the queries of our listeners.
Thank you. Namaskar.
Namaskar. And before we close, a reminder of the headlines. Stock markets kick off new fiscal on bullish note. Sensex Nifty hit all-time high in intraday. Prime Minister Narendra Modi says India needs to become economically self-reliant in next 10 years so that the nation is not impacted by much by global factors. And GST collections grew 11.5% to 1.78 lakh crores in March, second highest since the rollout. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLN, and the stock exchanges. Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% bookless offer is being offered at a price band of Rs. 542 to Rs. 570 per equity share of face value Rs. 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges.
Market Master.